वैसे है, अपने अपने आश्रम में है सबके पास, तो यहाँ अब लाए तो अच्छा रहेगा ताकि आप देख सकें कि क्या क्या चर्चा हो रही है। और आप में से जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कोई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने उपदेशामृत नहीं पढ़ा है अभी तक, तो आपको पढ़ के आना है, ठीक है? कम से कम जो श्लोक हम चर्चा करेंगे वो पढ़ना है।
हरे कृष्ण, हरि बोल।
तो यह है वाचो वेगम। वाचो वेगम मतलब बोलने का वेग या वाणी का वेग। ये बोलने की प्रवृत्ति जो है ये बहुत तीव्र होती है। और प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे ही बोलने के लिए कोई अवसर मिल जाता है व्यक्ति बोलने लग जाता है। तो भले हम उपवास करें एक दिन, भोजन नहीं खाएं, लेकिन मौन व्रत धारण करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे तक उपवास रखते हैं, भोजन नहीं देखते हैं, बात बहुत करते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन है ना। तो एक दिन कोई ऐसे हो कि हम रात को 12 बजे तक बात ही नहीं करें, वो ज़्यादा मुश्किल होता है, ज़्यादा तपस्या होगी। तो बोलने का वेग या वाणी का वेग ये बहुत प्रबल है। और अधिकतर ये देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति दुनिया में बात करता है वो कृष्ण के बारे में नहीं बात करता है, सामान्य लोगों की बात कर रहे हैं। तो जब कृष्ण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो फिर माया के बारे में ही बात करेंगे, भले वो दिखने में सुनने में कितना आकर्षक भी क्यों न लगे, बहुत बड़ा कवि हो, दार्शनिक हो, वैज्ञानिक हो, फिर भी उसकी बातें बेकार की है। तो जब वाणी हमारी असंयमित होती है तो हम क्या क्या बात करते हैं? भौतिक बातें, उदाहरण मेंढक और सांप का उदाहरण, अनावश्यक बातें या भौतिक बातें। जो कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं है वो भौतिक चर्चा है, ठीक है? तो इसमें मेंढक और सांप का क्या उदाहरण है, आप में से कोई बताएंगे?
हाँ,
जोर से थोड़ा सबको सुनाई दे।
जिस प्रकार मेंढक बातें करते ड्रॉ ड्रॉ करता है तो उसको सोचता है कि मैं सुंदर गा रहा हूँ लेकिन वो अपने मृत्यु का आमंत्रण दे रहा है और सांप को सुनकर अटैच करता है। उसी प्रकार भौतिकवादी जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते, फिलोसॉफर्स, तत्वज्ञानी, प्रोफेसर, बड़े बड़े व्यक्ति जो बातें करते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो उस मेंढक के समान है और अपने मृत्यु की मृत्यु को आमंत्रण देते।
हाँ, जिस प्रकार से मेंढक जोर जोर से टर्राता है और वो सोचता है कि उसकी वाणी बहुत मधुर है, कि वो बहुत सुंदर ढंग से गा रहा है, परंतु वो क्या रहा है, केवल वो सांप को सूचित करता है कि अभी आपका भोजन पास में है, क्योंकि मेंढक तो सांप का भोजन होता है। तो मेंढक को पता चलता है कि अब मेरा भोजन पास में है, ये मेंढक यहाँ पे है, और वो जाके खा जाता है, निगल जाता है मेंढक को। अभी उसी प्रकार से दुनिया में जो लोग बात करते हैं, भौतिक बातें करते हैं, वो भी काल रूपी सांप को आमंत्रित करते हैं। श्रीमद् भागवत में और अन्य ग्रंथों में भी काल की तुलना सांप से की गई है। और जब से हमारा जन्म होता है तब से हम काल के मुख में प्रवेश कर रहे होते हैं। तो कल्पना कीजिए कि ऐसे आदमी का जिसने काल या सांप के मुख में प्रवेश कर लिया है और धीरे 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 से सांप उसके शरीर को निगलते जाता है, निगलते जाता है, तो जैसे हर दिन बीतते जाता है वो काल रूपी सांप हमको और ज़्यादा निगल लेता है। और अंत में जब मृत्यु का समय आता है, मतलब सांप ने पूरी तरह से हमको निगल लिया। तो ये बड़े बड़े दार्शनिक कवि आदि होते हैं जो भौतिक बातें करते हैं, भले दुनिया उनको बहुत बुद्धिमान समझे, बड़े विद्वान समझे, उनको तरह तरह के पुरस्कार भी क्यों न मिले, परंतु केवल काल रूपी सांप को वो आकर्षित करते हैं, बस इतना ही उनका लाभ होता है। तो ये असंयमित वाणी इस प्रकार से है। तो इसको हम संयम में या नियंत्रण में कैसे ला सकते हैं? वैसे दो तरीके हैं संयम वाणी को संयम में लाना। तो एक चीज है, मौन व्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन मौन व्रत धारण करके कितने समय तक हम टिका पाएंगे? क्या टिका पाएंगे ठीक से? नहीं। जो मौन व्रत है, यहाँ पर उपा जी कहते हैं कि मौन व्रत से कोई लाभ नहीं होगा, विशेष करके मायावादी दार्शनिक क्या कहते हैं कि हमारे विचारों को हमें नष्ट करना है, विचारों को शून्य करना है, और साथ साथ हम मौन व्रत भी धारण करेंगे। ऐसे अनेक तपस्वी हैं। एक बहुत प्रसिद्ध तपस्वी थे जो कुंभ मेला में रोज आया करते, हर बार आया करते थे, रोज नहीं, हर कुंभ मेला में जब इलाहाबाद में होता था, प्रयाग में, तो वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठते थे और वही उनका स्थान था। वहाँ उनका छोटा कुटिया बनाया गया था पेड़ के ऊपर, और वहीं बैठे थे। और वो इतने प्रसिद्ध थे कि उन्होंने 12 साल से 20 साल से जो भी है मौन व्रत धारण किया है। तो केवल उनको देखने के लिए जगह जगह से लोग आते थे कि कौन है ऐसे व्यक्ति जिसने 12 साल से या 20 साल से बात ही नहीं किया है। तो ये भले लोगों को आकर्षित कर दे, और जो व्यक्ति मौन व्रत धारण करता है उसको वाक सिद्धि मिलती है। वाक सिद्धि मतलब फिर जब वो बोलना शुरू कर देता है, उसके बाद मौन व्रत धारण करने के बाद लंबे समय तक, फिर वो जो बोलेगा वो बहुत लोगों को आकर्षित करेगा, प्रभावशाली होगा, उसकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। तो ऐसे मौन व्रत धारण करने की पद्धति भी अनेक साधुओं के पास है, लेकिन फिर भी मौन व्रत धारण करके भी कब तक, कहाँ तक हम मौन व्रत धारण कर सकते हैं, इसे लाभ नहीं होगा। ये एक बीच का स्थान है, भौतिक बातें और कृष्ण भावनामृत की बातें, इसमें से बीच का मौन व्रत। तो मौन व्रत धारण करने से भी हम मृत्यु से बचेंगे नहीं, इसलिए वाणी को संयमित करने के लिए एक ही उपाय है, कृष्ण कथा। यदि हमें बोलना है तो कृष्ण कथा बोलना चाहिए, और यदि कृष्ण कथा बोलना नहीं है तो चुप रहना अच्छा है, तो फिर मौन ठीक है। इससे भला कि हम कोई भौतिक भौतिक बातें करें, इससे अच्छा ये है कि हम कुछ बोले नहीं, और कुछ नहीं बोलने से अच्छा ये है कि हम कृष्ण के बारे में बोले। तो कृष्ण कथा करने से हमारी वाणी संयमित हो जाएगी, और ये केवल भक्त कर सकता है। कृष्ण कथा और कौन करेगा भक्त के सिवाय? इसीलिए भक्त ही अपनी वाणी को नियंत्रित कर सकता है। तो ये वाणी का वास्तविक संयम है। तो इस प्रकार से कृष्ण कथा बोलने से वाचो वेगम, ये वाणी का वेग नियंत्रित किया जा सकता है। फिर मन का वेग, मनसः वेगम, ये मन भी बहुत चंचल है जैसा कि हम सब जानते हैं, और मन या तो हम कृष्ण में केंद्रित करें या माया में केंद्रित करें। जैसे कल हम श्लोक चर्चा कर रहे थे, तो उसी को कहते हैं कृष्ण सूर्य समान माया पर अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो यदि हमारा मन कृष्ण के ऊपर केंद्रित है तो मन नियंत्रित हो सकता है। उसमें ज्ञान का प्रकाश आएगा। लेकिन यदि मन कृष्ण के ऊपर केंद्रित नहीं है तो निश्चित ही माया पर केंद्रित होगा, कोई तीसरा मार्ग नहीं है। कृष्ण या माया, हम ऐसे नहीं कह सकते मैं कृष्ण में भी नहीं करूंगा और माया में भी नहीं करूंगा, नहीं ऐसे संभव नहीं। या तो ऐसे या वैसे, या कृष्ण है या माया है। तो कृष्ण के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो माया के बारे में सोच रहे हैं। तो माया अंधकार है, तो माया अंधकार, या अंधकार की बातें दो प्रकार की बातें हैं जैसे प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं। एक है भौतिक विचार, संसार के बारे में सोचना, भोग के बारे में सोचना, और दूसरे प्रकार का अंधकार है इस मन के विचारों को शून्य करने का प्रयास करना। जैसे पिछले बार भी कह रहे थे अभी, लेकिन ये संभव नहीं है। क्रियाशील नहीं होना, निष्क्रिय होना, या विचारों को शून्य करना, ये एक कृत्रिम अवस्था है। मौन व्रत धारण करना, विचारों को शून्य करने का प्रयास करना, ये क्यों संभव नहीं है बताइए?
मन का कार्य विचार करना, मन का कार्य ही विचार करना है।
तो लेकिन समझ लीजिए, मन को नियंत्रित कर लिया है, हम सोचेंगे ही नहीं, क्यों नहीं संभव?
जीवात्मा का स्वभाव ही कुछ ना कुछ करना।
हाँ बिल्कुल सही, जीवात्मा का स्वभाव ही है क्रियाशील होना, निष्क्रियता ये जीवात्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए जीव निराकार ब्रह्म में भी जाके संतुष्ट पूरी तरह से नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मांड निराकार ब्रह्म में जाने के बाद भी पतन होने की संभावना रहती है, क्योंकि वहाँ रस नहीं है, वह ना कोई बातचीत है, ना कोई आदान प्रदान प्रेम का है, ना कोई कार्य है, केवल अस्तित्व बना रहता है। जैसे हमें यदि कोई कहे कि आपको हम 10,000 साल की आयु देंगे, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपके पास सारे दुनिया का धन रहेगा, लेकिन किसी के साथ बातचीत नहीं करना है, अकेले बैठना है और एक ही कमरे में बैठना है, कोई काम नहीं करना है और सोचना भी किसी चीज के बारे में नहीं, तो क्या आप स्वीकार करेंगे? संभव भी होता तो क्या आप स्वीकार करते? नहीं। ऐसे अस्तित्व से क्या मतलब है? न किसी से बात कर सकते हैं, किसी से संबंध रख सकते हैं, न कुछ सोच सकते हैं, न कुछ बोल सकते हैं, तो फिर क्या फायदा है? ये निराकार ब्रह्म में रहने की अवस्था है। तो इसलिए क्योंकि जीव क्रियाशील होता है स्वभाव से, स्वरूप से, इसलिए ये मौन व्रत धारण करना और अपने विचारों को शून्य करने का प्रयास करना, ये सदैव असफल रहेंगे, ये संभव नहीं है। और ऐसे दोनों से, चाहे हम भौतिक विचार करें मन में या मन को शून्य करने का प्रयास करें, दोनों ही तरीकों से मन असंयमित रहेगा, अनियंत्रित रहेगा। परंतु भगवान कृष्ण जो सूर्य के समान हैं, उनके बारे में हम सोचने का प्रयास करें, कृष्ण भावना का अनुशीलन करें, अपने मन को प्रशिक्षित करें, ट्रेनिंग दें कि वो कृष्ण के बारे में सोचे, तब मन हमारा नियंत्रित हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये है मन का भेद। अगला है क्रोध भेद। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्रोध का नियंत्रण करना ये साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी यहाँ ये वेग इतना प्रबल है कि इसको नहीं रोका जा सकता, बहुत शक्तिशाली है। क्या आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ जगत में क्रोध पाया जाता है? आपका क्या विचार है? आप में से कितने लोग हाँ बोलते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग ना बोलते हैं और कितने लोग हाँ भी और ना भी है, नहीं पता। वैसे आपको पता है कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का एक विकृत प्रतिबिंब है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है ना। तो वहाँ शुद्ध रूप में पाया जाता है जो वस्तु, वो यहाँ पे विकृत रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ प्रेम स्वाभाविक अवस्था है वैकुंठ जगत में। तो जब उसका परिवर्तन हो जाता है, प्रतिबिंब हो जाता है इस जगत में, तो क्या रूप होता है यहाँ पर?
काम।
तो वहाँ जो प्रेम है यह काम बन जाता है। उसी प्रकार से नम्रता, वहाँ जो नम्रता है उसका स्वरूप यहाँ क्या है?
घमंड,
अहंकार, ठीक है। वहाँ जो संतुष्टि है, आत्म संतुष्टि है, उसका विकार यहाँ कैसे प्रस्तुत होता है? लोभ, लोभ। ऐसे देखा जाए तो वहाँ जो भी कुछ भावनाएं वैकुंठ जगत में है उनका प्रतिबिंब यहाँ दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ इस दुनिया में जो क्रोध पाया जाता है उसका शुद्ध स्वरूप आध्यात्मिक जगत में क्या है? करुणा। इसलिए ऐसे भी बताया जाता है कि क्रोध को दूर करने के लिए करुणा की भावना जागृत करना है। जब क्रोध अहंकार से उत्पन्न होता है तो वो अच्छा नहीं है। अधिकतर लोग क्रोधित क्यों होते हैं? अहंकार उनका चुभ जाता है या इंद्रिय तृप्ति में कोई बाधा आती है तब उनको क्रोध आता है। लेकिन क्रोध को शून्य नहीं करना है हमें। आवश्यकता पड़ने पर भगवान की सेवा में क्रोध का प्रयोग किया जा सकता है और कभी कभी करना चाहिए। जिस प्रकार से इस भौतिक दृष्टि में भी देखा जाता है कि माता पिता यदि बच्चे के ऊपर क्रोध नहीं करें, अध्यापक यदि अपने शिष्य विद्यार्थी छात्र के ऊपर क्रोध नहीं करे, और कभी कभी राजा एक ऐसे प्रजा के ऊपर क्रोध नहीं करे जो क्रोध जो दुष्ट है, तो क्या संसार चल सकता है? इस भौतिक सृष्टि में क्रोध का बहुत बड़ा महत्व है। क्रोध के बिना दुनिया नहीं चल सकती, क्योंकि यह सब बद्ध जीव है, सबका स्वभाव ठीक नहीं है। उसी प्रकार से गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य को डांटना कभी आवश्यकता पड़ने पर। तो इस तरह से क्रोध भी बहुत लाभदायक होता है, परंतु जब क्रोध को वश में किया जाता है और क्रोध हमारे लिए एक यंत्र बन जाता है, तो जब जिस प्रकार से हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, ये सारे यंत्र इस्तेमाल करते हैं, तो हम जब चाहते हैं तब इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करते हैं, और जब रोकना है अपनी इच्छा पे रोक लेते हैं। तो हम इस यंत्र के नियंत्रण में नहीं है, यंत्र हमारे नियंत्रण में है, सही है। उसी प्रकार से क्रोध हमारे लिए एक यंत्र के समान होना चाहिए। जब हम चाहे क्रोध को इस्तेमाल करें और तुरंत उसको समेट लें अपने अंदर। ऐसा नहीं कि क्रोध ही हमको शिकार कर बैठे और हम क्रोध के शिकार होकर नियंत्रण के बाहर में आके हम गुस्सा हो जाए, नहीं। तो क्रोध का प्रयोग हम कर सकते हैं, परंतु क्रोध हमारे वश में होना चाहिए। जब हम प्रकट करना चाहें और नहीं करना चाहें वो हमारे हाथ में होना चाहिए, और जब प्रकट करें भी तो केवल भगवान की सेवा के लिए। आपने राजा सिकंदर के बारे में सुना है ना, अलेक्जेंडर जो ग्रीस देश के राजा थे, काफी विश्व भर के बड़े बड़े स्थानों में उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था और सिंधु नदी तक भी वो पहुँचे थे। ग्रीस से इतना दूर है यहाँ तक पहुँचे थे, फिर यहाँ से वो वापस गए। लेकिन उनके बारे में ऐसे बताया जाता है कि उन्होंने सोचा, मैंने भारतवर्ष के बारे में बहुत कुछ सुना है, यहाँ साधु लोग बहुत हैं और ऐसे कोई यहाँ का कोई योगी है तो उसको मुझे ले जाना चाहिए वापस, ताकि मेरे देशवासियों को मैं दिखाऊं कि यहाँ योगी लोग कैसे होते हैं, साधु क्या करते हैं, उनकी तपस्या कैसी होती है इत्यादि। तो एक योगी के पास गए तो वहाँ योगी पेड़ के नीचे बैठ के अपना ध्यान कर रहा था। तो योगी से कहा कि आप चलिए मेरे साथ मेरे देश में। तो योगी ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं आना चाहता, मैं यहीं पर ठीक हूँ, यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, वहाँ विदेश में जाके क्या करूँगा। तो अलेक्जेंडर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं वीज़ा पासपोर्ट सब कर रहा हूँ, चलो कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी उन्होंने नहीं माना तो राजा का गुस्सा आ गया कि मैं विश्व सम्राट हूँ और ये मेरी बात को नहीं मान रहा है। तो तलवार बाहर निकाला और कहने लगे कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ और तुम मुझे इनकार कर रहे हो। तो योगी ने जवाब दिया कि तुम मेरे दासों के दास हो। तो राजा को और भी गुस्सा आ गया, अरे ये तो बड़ा बदमाश आदमी है, ऐसे बात करता है, पहले तो मेरी बात नहीं मानता और दूसरी बात कह रहा है कि मैं तुम्हारे दासों का दास हूँ। गुस्सा तो बहुत आ गया, लेकिन राजा सिकंदर बुद्धिमान भी था, उसने सोचा कि सुन तो लेते हैं कि क्यों ऐसे बोल रहे हैं। उसने बोला कि क्यों ऐसे बोल रहे हो, मैं तुम्हारे दासों का दास हूँ। तो कहा कि देखो, मेरे हाथों में क्रोध मेरा गुलाम है और तुम क्रोध के गुलाम हो, तो क्रोध मेरा गुलाम है, तुम क्रोध के गुलाम हो, तो तुम मेरे गुलाम के गुलाम हो, तुम क्रोध मेरा दास है, क्रोध को मैं वश में कर लेता हूँ, जब चाहे प्रयोग कर सकता हूँ, वो मेरे हाथ में है और तुम क्रोध के हाथ में, तो इसलिए तुम मेरे दासों के दास हो। इसलिए हमारे लिए क्रोध को वश में करना साधारणतः बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे क्रोध को वश में किया जा सकता है, प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान और भक्तों की निंदा करने वालों पर क्रोध का प्रयोग करना है। जैसे हनुमान जी ने रावण की लंका को जला डाला, क्रोध किए बिना ऐसे कैसे संभव हो सकता है, तो हनुमान जी ने क्रोध का प्रयोग सही किया। उसी प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्रोध का प्रयोग किया कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के आदेश के अनुसार। जैसे कल रात को प्रवचन में बता रहे थे कि एक सज्जन ने पूछा था कि क्रोध वैष्णव वो होता है जो क्रोध नहीं करता। हमने कहा ऐसे कोई परिभाषा नहीं, ऐसे नहीं कहीं कहा गया है कि वैष्णव क्रोध नहीं करता। अहंकार से उत्पन्न होने वाले क्रोध को वो रोक देता वो सही, लेकिन भगवान की सेवा में यदि क्रोध करने का क्रोध करने की आवश्यकता पड़े वो क्रोध कर लेता। पर बता रहे थे जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ रहे थे तो क्रोध किए बिना क्या कोई युद्ध कर सकता है, वो हरि बोल कह के कोई तीर छोड़ सकता है, चेहरे से है ना, हंसमुख चेहरे से एकदम भी दोस्ती के चलो हम थोड़ा तीर छोड़ देंगे। महाभारत भी आप पढ़ देंगे तो आप देखेंगे कि कैसे भागवत में भी ऐसे है, जब आमने सामने आते थे क्षत्रिय तो एक दूसरे को कटु वचनों से वो ललकारते थे ताकि एक दूसरे को वो भड़काए। जब क्षत्रिय भड़काया जाता है तो फिर गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होता है तो फिर बड़े अच्छी तरह से झगड़ा करता है ना। हाँ, इस वृत्ति को यह हमें मंदिर के अंदर नहीं लाना चाहिए। हम एक भक्त को पहचानते हैं जो बहुत झगड़ा करता है, सबके साथ, है ना, सबके साथ झगड़ा करता है। और फिर वो कहता है कि मैं क्षत्रिय हूँ। ऐसे क्षत्रिय नहीं होता है, केवल कोई दूसरों के साथ झगड़ा करता है इसलिए वो क्षत्रिय होगा, ऐसे नहीं। क्षत्रिय वो है जो युद्ध भूमि में जाएगा और वहाँ गोली खाने के लिए तैयार हो जाएगा, तब वो सच्चा क्षत्रिय है। केवल मंदिर में सबके साथ झगड़ा करने से आदमी क्षत्रिय नहीं बनता है, है ना। इसलिए ये युद्ध जो अर्जुन ने किया उसमें क्रोध का सही प्रयोग किया। क्यों? कृष्ण के आदेश के अनुसार उन्होंने युद्ध किया। इसलिए ये युद्ध गलत नहीं है, ये क्रोध गलत नहीं है। बल्कि यदि इस समय अर्जुन क्रोध नहीं करते तो फिर वो गलत हो जाता है। और तीसरा उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं वो चैतन्य महाप्रभु, स्वयं भगवान ने दिखाया है कि कैसे क्रोध का प्रयोग करना चाहिए। जब मदाई ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर आक्रमण किया, प्रहार किया, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु आग बबूले हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, कहा कि इसी समय हम उस मदाई को, दुष्ट मदाई को नष्ट कर देंगे। परंतु नित्यानंद प्रभु ने हाथ जोड़ के, पैर पड़ के चैतन्य महाप्रभु को शांत किया कि आपका जो अवतार है इस कलयुग में वो दुष्ट लोगों के शरीर को नष्ट करने के लिए नहीं है। यदि ऐसे होता तो आपको सभी लोगों को खत्म कर देना होता, लेकिन आपका अवतार है जो उनके हृदय में दुष्ट व्यक्ति बैठा है, राक्षस बैठा है, अर्थात उनकी दुष्ट प्रवृत्ति जो है उसको नष्ट करना, ये आपका काम है। फिर चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए और उन्होंने करुणा की उनके ऊपर। देखिए करुणा और क्रोध, हाँ, करुणा क्रोध को वश करने के लिए करुणा चाहिए। नित्यानंद प्रभु का करुणा कीजिए इनके ऊपर, तब महाप्रभु का क्रोध शांत हो गया। लेकिन फिर भी महाप्रभु का क्रोध सही था, क्योंकि एक भक्त के ऊपर, हाँ नित्यानंद प्रभु तो बलराम जी हैं परंतु लीला कर रहे हैं भक्त का, एक भक्त के ऊपर ऐसे कोई प्रहार करे या निंदा करे या अपमान करे तो फिर क्रोध प्रकट करना चाहिए। उस समय हम ये नहीं कह सकते मैं भक्त हूँ मैं वैष्णव हूँ, वैष्णव को क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं, वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो ये है क्रोध वेगम, फिर है जिह्वा वेगम और उदर वेगम। जीभ के दो कार्य होते हैं, एक कार्य होता है बोलना, बड़बड़ बात करते रहता है ना जीभ, और ये जीभ इतना प्रबल है कि इतना छोटा है ये लेकिन सारे दुनिया को बिगाड़ सकता है, है ना। तो बड़े बड़े जो युद्ध हुए हैं वो क्यों होते हैं? उस जीभ के कारण। एक राजा ने कुछ बोल दिया, दूसरे राजा भड़क गया, उसने आक्रमण किया, दोनों ने बड़ी बड़ी सेनाएं इकट्ठी कर ली, एक दूसरे के साथ युद्ध कर लिया, लाखों लाखों सैनिक खत्म हो गए। ऐसे ही इतिहास देखेंगे तो ऐसे ही होता है, अनियंत्रित वाणी से। तो जीव का एक काम, भक्ति विनोद ठाकुर अपनी टीका में कहते हैं कि जब हमारी वाणी संयमित नहीं होती है इससे केवल वैर या दुश्मनी पैदा होता है बस, क्योंकि जीव को हम वश में नहीं करते तो कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोल ही देंगे, और बोलेंगे तो किसी की निंदा तो करेंगे ही, और जब उस व्यक्ति को पता चलेगा कि हमने निंदा किया है तो वो हमारे साथ दुश्मन बन जाएगा हमारे खिलाफ, तो इसलिए झगड़े हो जाएंगे, फिर युद्ध हो जाते हैं। इसलिए अनियंत्रित वाणी का ये प्रमाण, ये परिणाम है। परंतु जीव का दूसरा भी एक कार्य होता है और वो है खाना, स्वाद लेना। तो जीव ये भी चाहता है कि वो स्वादिष्ट व्यंजनों को चखे, और ये भी बहुत प्रबल वेग होता है। साथ साथ में हमारा पेट उधर चाहता है कि और भरे पेट, और ज़्यादा भोजन पेट में जाए। तो इसलिए जिह्वा वेगम और उदर वेगम दोनों की चर्चा एक साथ प्रभुपाद जी कर रहे हैं, और इनका उनका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने से। यदि कोई कहे मैं जीव और उदर का नियंत्रण करूंगा उपवास करके, थोड़े हद तक किया जा सकता है, करना चाहिए। कृष्ण भावना में हम करते हैं ना, उपवास आदि करते हैं, वो भी जीव के नियंत्रण के लिए, उदर के नियंत्रण के लिए अच्छा होता है। परंतु कोई कहे कि मैं ध्रुव महाराज की तरह मैं भी उपवास करूँगा, केवल पत्ते खाऊंगा पहले महीने में, दूसरे महीने में केवल पानी पीऊँगा, तीसरे में केवल हवा खाऊंगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। हम षड गोस्वामियों की नकल भी नहीं कर सकते। जो षड गोस्वामी होते थे वो थोड़ा बहुत छाछ पीते थे दो तीन दिन में एक बार, और वो मुट्ठी में जितने बूंद आते थे उतना एक बार पीते थे, कभी कभी वो भी भूल जाते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य ऐसे था वृंदावन में, तो ऐसे तो हम नकल नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति सोचते हैं कि केवल उपवास करके हम जीव को वश में करेंगे, ये संभव नहीं है। शरीर ही हमारा नष्ट हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो एक ही उपाय है कि कृष्ण प्रसाद लेना। हम प्रसाद लेने के पहले क्या कहते हैं? शरीर अविद्या जाल। ये शरीर अविद्या का जाल है, जड़ इंद्रिय का। इसका क्या मतलब?
सबसे जड़
इंद्रिया बहुत जड़ है और कष्ट देती है। इंद्रियों में से तार मध्य जिह्वावती, इन इंद्रियों में से जो जीव है लोभमय और सुदुर्मति। लोभमय मतलब बहुत लोभी है, बहुत चाहता है और सुदुर्मति, दुर्मति मतलब जो कोई विवेक नहीं है उसके अंदर कि ये खाना है नहीं खाना है, रोको अभी, कुछ विवेक नहीं। दुर्मति मतलब जो मन में आए जो भी हो वो बस करना है। सुदुर्मति मतलब बहुत ज़्यादा दुर्मति, लोभों में सुदुर्मति। ताके चेता कठिन संसार, लेकिन इसको जीतना बहुत कठिन है। ताके चेता कठिन संसारे, परंतु कृष्ण बड़ा दयामय। क्यों कृष्ण दयामय है? कोई बार जिह्वा जाए, जीव के ऊपर जय विजय प्राप्त करने का तरीका उन्होंने रखा है। स्व प्रसाद अन्न दिलोभा है, उन्होंने हमको कृष्ण प्रसाद दिया है। शेही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमिडा को चैतन्य बिताए। तो कृष्ण प्रसाद का पान करने मात्र से हम इस जीव के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा जीव को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। और एक बात ये है कि कोई व्यक्ति कहे चलो कृष्ण प्रसाद लेना है ना, तो दबा के कृष्ण प्रसाद खाएंगे, खूब खाएंगे कृष्ण प्रसाद, रोज रोज का रोज खाएंगे, कृष्ण को अर्पण किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा खाएंगे, तो वो भी ठीक नहीं है। वो भी सीमा में खाना चाहिए। केवल कृष्ण प्रसाद है इसके बहाने हम जीव और उदर को दुष्ट करने का प्रयास करते जाएं तो वो नियंत्रित नहीं होंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण प्रसाद भी हो वो भी नियंत्रण में होना चाहिए। ठीक है, कोई कहे कि कृष्ण प्रसाद है तो हम केवल संदेश ही खाएंगे और रसगुल्ला गुलाब जामुन खाएंगे खूब दिन भर। एक बार एक मंदिर में, बहुत साल पहले की बात है, पुजारी के कमरे से जहाँ महाप्रसाद ऑल्टर से बाहर आता था और फिर कभी वो रखते थे उधर, तो हर रोज ये देखा जाता था कि वहाँ से जो खीर है महाप्रसाद वो गायब हो जाता था। अभी कौन चोरी कर रहा है ये पता नहीं चलता था। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो कुछ एक अलमारी में डाल दें, अलमारी में डाला फिर भी वहाँ से गायब हो, चलो अलमारी पर चार ही ताला लगा दो, फिर भी ताला तोड़ के कोई उठा के ले जाता था। अब बड़ी समस्या हुई, अब मंदिर के प्रेसिडेंट थे बड़े परेशान थे, पुजारी लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं, अभी क्या करें, कौन उठा के ले जा रहा है। उस जमाने में कैमरा वैमरा की सब सिस्टम नहीं था, आजकल तो है, सब क्लोज सर्किट टीवी में सब देख सकते हैं क्या क्या चल रहा है, तो कौन महाप्रसाद चोरी कर रहा है। तो फिर एक रात को एक व्यक्ति बाहर बैठा, रात भर बैठा, फिर उसको पकड़ा दिया, भागता, ये चोरी कर रहा है रोज महाप्रसाद का चोरी खीर का। तो फिर मंदिर के टेंपल प्रेसिडेंट के पास अगले दिन लाए, टेंपल प्रेसिडेंट ने खूब डांटा, क्यों चोरी करते हो, क्या तुमको भोजन नहीं मिल रहा है, प्रसाद मिलता है ना, ऐसे चुप चुप के चोरी करना। तो वो भक्त बोलने लगा, बुद्धिमान था, कहने लगा कि प्रसाद जो महाप्रसाद है कृष्ण से अभिन्न है, और हमको बताया गया है कि कृष्ण के प्रति हमें लोभ होना चाहिए, लोभी होना चाहिए, तो हम कृष्ण को ही स्वीकार कर रहे हैं, महाप्रसाद तो कृष्ण से भिन्न नहीं है, तो आप क्यों डाकते हैं जब हम कृष्ण प्रसाद लेते हैं, तो हम महाप्रसाद ले रहे हैं। तो वो भक्त बुद्धिमान था, लेकिन टेंपल प्रेसिडेंट उससे ज्यादा बुद्धिमान था। उसने कहा, उन्होंने कहा कि तुम महाप्रसाद चाहते हो तो रोज केवल खीर क्यों चोरी करते हो, कभी सब्जी चोरी करते, कभी रोटी चोरी करते, कभी चावल चोरी करते, ये भी तो महाप्रसाद है, तो वो क्यों नहीं चोरी किया, कभी नहीं, केवल खीर क्यों चोरी किया, क्योंकि तुमने चोरी किया इसलिए नहीं कि ये महाप्रसाद है, तुमने चोरी इसलिए किया कि ये तुम्हारे जीव को तुम संतुष्ट करना चाहते हो, जिह्वा वेग ने तुमको चोरी करने के लिए प्रेरित किया, कृष्ण भक्ति का वेग नहीं, इसलिए तुम स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहते थे, इसलिए तुमने ऐसे किया। तो कहने का मतलब ये है कि कृष्ण प्रसाद के बहाने भी हमें अनियंत्रित भोजन नहीं करना चाहिए, केवल कृष्ण प्रसाद और वो भी नियंत्रण में, ठीक है। उपस्थ वेगम, उपस्थ मतलब जननेन्द्रिया, तो उपस्थ तो जननेन्द्रियों का वेग, इसका नियंत्रण कैसे हो सकता है, कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति। हाँ, ये केवल गृहस्थों के लिए है, कोई ब्रह्मचारी कहे कि हम बताया गया है कि उत्पत्ति जो ऐसे किया जाता है तो हम भी करेंगे, नहीं ऐसा संभव नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति, लेकिन ये हमको समझ लेना चाहिए, इतना बुद्धिमान होना चाहिए समझने के लिए कि प्रभुपाद केवल गृहस्थ आश्रम की बात कर रहे हैं, केवल गृहस्थ आश्रम के लिए ही ये संभव है, न ब्रह्मचर्य आश्रम में, न वानप्रस्थ आश्रम में और न संन्यास आश्रम, केवल गृहस्थ आश्रम में इस प्रकार से किया जा सकता है। इसका मतलब है कि संभोग केवल कृष्ण भावना भावित संतान के लिए ही किया जा सकता है, अन्यथा वो काम है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, धर्म अविरुद्ध है, जो धर्म के अविरुद्ध है, अर्थात तो जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है, ये काम मैं हूं हे अर्जुन, ऐसा कृष्ण स्वयं कहते हैं। तो जब गृहस्थ आश्रम के अंदर ऐसे संभव होता है, केवल एक कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति के लिए, फिर वो काम काम नहीं कहलाता है, वो स्वयं कृष्ण ही है। और जो गृहस्थ इन सिद्धांतों के ऊपर जीता है, जो जीते हैं ऐसे, वो भी ब्रह्मचारी कहलाते हैं। लेकिन यदि कोई गृहस्थ संतान की उत्पत्ति के अलावा केवल अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए संभोग करते हैं तो फिर वो ब्रह्मचारी नहीं कहलाते। केवल संतान की उत्पत्ति करने के लिए जो ऐसे संभोग करता है उसको क्या कहते हैं, किस प्रकार का ब्रह्मचारी? गृहस्थ ब्रह्मचारी, ठीक है, उपकुर्वण ब्रह्मचारी, उपकुर्वण। और जो बचपन से ही ब्रह्मचारी है, अंत तक ब्रह्मचारी है, उसको क्या कहते हैं? नैष्ठिक ब्रह्मचारी। जैसे नारद मुनि, नारद मुनि नैष्ठिक ब्रह्मचारी बचपन से अंत तक। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में रह के ऐसे नियम का पालन करते हैं, प्रभुपाद जी दूसरी जगह समझाते हैं उनके तात्पर्यों में, कि वह उपकुर्वण ब्रह्मचारी कहलाता है। और उसमें और ब्रह्मचारी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही कृष्ण के लिए जी रहे हैं। लेकिन ब्रह्मचारी का जीवन ज्यादा सुरक्षित है, तो ब्रह्मचारी को ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो फिर क्या बुराई है, हम भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके हम ब्रह्मचारी ही रहेंगे, उपकुर्वण ब्रह्मचारी हम हो जाएंगे। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है, विशेष करके आधुनिक काल में बहुत मुश्किल है। इसलिए ब्रह्मचारी रहना ही ठीक है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि काम वासना हमको बहुत सता रही है, इसलिए हम ब्रह्मचारी हमको रहना बहुत कष्ट लग रहा है, ठीक है, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं रहने से जो कष्ट आएगा वो इससे ज्यादा होगा। इसलिए कम कष्ट सहन करके रहना ही ठीक है। और यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप आदि ठीक से करेंगे, हमारी सेवा ठीक से करेंगे, तो अवश्य धीरे 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 से हमारे अंदर जो काम वासना है वो कम हो जाएगी, और फिर हमारे लिए उपस्थ का वेग जो है उसको नियंत्रण में लाना संभव हो जाएगा, कृष्ण भावना भावित में, भावना भावनावृत में, अन्यथा ये संभव नहीं है। सौभर मुनि की कथा तो आप सब जानते हैं ना। सौभर मुनि ने इतने वर्षों तक तपस्या की, इतने कड़ी तपस्या की इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। जल के भीतर जाके नदी के अंदर, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? लेकिन क्योंकि वो कृष्ण भक्त नहीं थे, जब उन्होंने दो मछलियों को साथ में देखा संभोग करते हुए, तो उनके मन में काम वासना उत्पन्न हो गई, अपनी तपस्या को छोड़ के जल के बाहर आके राजा मानधाता के दरबार में गए और उनकी पुत्री के साथ विवाह करने का प्रस्ताव राजा के सामने रखा। राजा ने देखा कि ये इतना बूढ़ा आदमी है और पानी में इतने साल रहने के कारण उसकी चमड़ा जो है वो बिल्कुल मूर्छित हो गया है, मुरझा गया है, तो कैसे मेरी कन्याओं को, मेरी पुत्रियों को इनके साथ विवाह देंगे। लेकिन वो बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने जान लिया कि मैं साफ इनकार कर लूँगा तो ये शाप वाप दे लेगा तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि मेरी पुत्री आपसे विवाह करना चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उनको पता था कि कौन सी पुत्री स्वीकार करने वाली है ऐसे पति को, तो वो उनकी कन्याओं के पास गए, 50 कन्याएं थीं, और सभी ने इनको देखा, कहा नहीं हम इनके साथ विवाह नहीं करेंगे। लेकिन योग सिद्धि प्राप्त हुई थी सौभरी मुनि को, और उन्होंने अपना शरीर तरुण बना दिया, बहुत सुंदर बनाया, और जब वापस आए तो 50 कन्याओं ने उनसे विवाह करना चाहा, तो उन्होंने 50 राजकुमारियों से विवाह कर दिया। तो देखिए इतनी शक्ति थी सौभरी मुनि की कि वो अपने बुढ़ापे को बदल के युग अवस्था शरीर में ला पाए, ऐसी शक्ति योग अभ्यास करने से। परंतु काम वासना वश में नहीं आई, फिर अंत में अनेक साल भोग करने के बाद उन्होंने सोचा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली, केवल एक घटना से क्या क्या हो गया, एक छोटा सा विचार एक बार आया, एक दृश्य देखा, तो उससे क्या नहीं हुआ, कितना जीवन उनका परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार से अजामिल के बारे में भी हम सुनते हैं, एक दृश्य देखा बस, और उस एक दृश्य से कितना कुछ बड़ा हो गया, सारा जीवन उनका परिवर्तित हो गया। उसके पहले अजामिल तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, धर्मपरायण व्यक्ति था, माता पिता की सेवा करता था, अच्छा ब्राह्मण था, लेकिन एक घटना से देखिए कितना फर्क पड़ गया, क्योंकि वो इतनी तीव्रता से भक्ति नहीं कर रहा था। तो ठीक उसी प्रकार से हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में भी एक छोटी सी घटना हो जाए उससे जीवन बहुत परिवर्तित हो सकता है। इसलिए ब्रह्मचारी को चाहिए कि वो बहुत सतर्क रहे, विशेष करके माताओं के साथ संबंध रखते हुए। माताओं को माता ही समझना चाहिए, जो महिलाएं हैं माता समझना चाहिए, आवश्यकता से अधिक बातचीत या संग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और आजकल ये देखा जाता है, बहुत भयंकर एक खतरा आ गया है सारे दुनिया में, और वो है इंटरनेट। और इंटरनेट में जाके आजकल लोग क्या नहीं करते हैं, तो विशेष करके भक्तों को, हाँ हाँ ब्रह्मचारियों को तो है, साथ साथ सभी को चाहिए कि वो इस इंटरनेट से बहुत बच के रहें। प्रयोग करता है केवल कृष्ण की सेवा के लिए। हर एक आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम में ये समस्या रहती है, कोई ना कोई एक भक्त ऐसे अवश्य मिल जाता है जो ऐसे कोई गलत काम करता है इंटरनेट पे जाके, और पकड़ा जाता है कभी। हर एक आश्रम में हमने देखा है, ऐसा कोई आश्रम नहीं है जहाँ ये इससे बचा हुआ है। इसलिए हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, समझ लेना चाहिए। ये आधुनिक तकनीकी ज्ञान से, जैसे ये कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, इन चीज़ों से बहुत खतरे होते हैं। हमारे ब्रह्मचर्य के जीवन के ऊपर बहुत धोखा हो सकता है, खतरा हो सकता है। और ऐसे बातचीत बढ़ाने से और चित्र आदि देखने से फिर उपस्थ का वेग कैसे नियंत्रित हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि जैसे प्रभुपाद जी ने हमें शुद्ध जीवन आश्रम के भीतर बिताने का आदेश दिया है, वैसे ही बिताना चाहिए। और हम जब बाहर जाते हैं और माया का संग करते हैं, मंदिर के अंदर भी माया का संग करना पड़ता है, तो हमें हमारे भक्ति के पद्धति का आश्रय लेना चाहिए। अच्छी तरह से भगवान का शरण लेते हुए नाम जप और कीर्तन करना चाहिए। यदि ऐसी तरह से हम श्रवण कीर्तन को मजबूत करेंगे तो अवश्य हमारे उपस्थ भी नियंत्रित हो जाएंगे कृष्ण भावना भावित में। और जो गृहस्थ हैं इसके अलावा वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी इंद्रियां ये सब नियंत्रित हो सकती हैं। अभी इनके बारे में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी टीका लिखी है उपदेशामृत के बारे में। तो इस टीका का नाम है अनुवृत्ति टीका। अनुवृत्ति टीका में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये जो शब्द वेग हैं उनका विभाजन उन्होंने तीन भागों में किया है, त्रिवेग। एक है वाणी का वेग, और जहाँ तक मन का वेग है उसके दो भाग उन्होंने किए हैं। एक है मन का वेग और दूसरा क्रोध का वेग, क्योंकि क्रोध भी तो मन से ही उत्पन्न होता है। और तीसरा है शरीर का वेग, जिसके तीन भाग हैं, जिह्वा वेग, उदर वेग और उपस्थ वेग। बात वही है, केवल श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसको दूसरे ढंग से बोल रहे हैं बस। तो ऐसे उन्होंने विश्लेषण किया है इन वेगों का। अब प्रभुपाद जी के टीका में ये सब पाएंगे, केवल इस रूप में हम अभी यहाँ पे बता रहे हैं आप सब। ठीक है, आगे बढ़े कि आप लिख रहे हैं अभी थोड़ा है? लिखना है, ठीक है। तो कल भी जब क्लास होगा तो इसके पहले कृपया आप दूसरे श्लोक को और उसके तात्पर्य को पढ़ के आइए, ताकि समझने के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। ये हमारे लिए ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, प्राथमिक है, हमारे भक्ति के जीवन की बुनियाद है, इसलिए इस ग्रंथ को हमें अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए और समझ भी लेना चाहिए। तो अंत में है ही छह वेद, केवल इनका विभाजन सरस्वती ठाकुर ने किया है। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं बोलने का वेग, जो वाणी का वेग है, वो दो प्रकार से प्रकट हो सकता है। एक है बोलने से अपने मुंह से, और दूसरा है पुस्तकों के द्वारा लिखने से। जो पुस्तकें हैं या समाचार पत्र हैं, उपन्यास हैं, पत्रिकाएं हैं, इनकी कोई कमी नहीं है। एक बार हम रेलवे स्टेशन में गए थे तो रेलवे स्टेशन में ये पत्रिकाएं बेचने वाले लोग दुकान रहते हैं, तो हम देखा कि 50-100 न जाने कितने तरह तरह के पत्रिकाएं थी, कितने पत्रिकाएं अलग 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 विषय पर, लेकिन सब एक ही मूल विषय एक ही है, वो क्या है, इंद्र तृप्ति। और ऐसे ऐसे चित्र जो किसी को देखना नहीं चाहिए, ये सब अभी बाहर से सब बेच रहे हैं, और कितने सारे लोग इनको खरीदते हैं, इनका चिंतन मनन इन्हीं चीजों पे होता है। तो पुस्तकों के माध्यम से भी हम बहुत कुछ बोलते हैं। प्रभुपाद जी इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश को बहुत गंभीरतापूर्वक लिए पुस्तक छापने की बात, इसलिए पुस्तकों को उन्होंने क्या बताया, बृहत मृदंग। एक जो मृदंग है, जब हम कीर्तन करते हैं तो मृदंग की वाणी जो है, जो ध्वनि है, वो कहाँ तक पहुँचती है, थोड़े दूर तक पहुँच सकती है, ज़्यादा दूर नहीं पहुँचती। लेकिन जब जो मुद्रणालय है जहाँ से हम पुस्तक छापते हैं, फिर पुस्तकों को हम वितरण करेंगे, तो वो पुस्तक हजारों मीलों तक दूर पहुँच सकते हैं। वही कृष्ण की वाणी बहुत दूर दूर तक फैल सकती है, इसीलिए इसको बृहत मृदंग कहते थे। तो बोलने में और पुस्तक छापने में कोई अंतर नहीं है, इसलिए बोलने का वेग जो है, ये दो प्रकार से ऐसे प्रकट हो सकता है। एक गांधी है ना, मोहनदास करमचंद गांधी, उनके जो आर्थिक जो विचार है उनसे प्रभुपाद जी बहुत सहमत थे। उनके राजनीतिक और सामाजिक आदि विचारों से, धार्मिक विचारों से इतने सहमत नहीं थे प्रभुपाद जी, लेकिन उनके जो आर्थिक विचार थे कि कैसे गांवों का विकास करना चाहिए, ग्राम स्वराज आदि, ऐसे बातों में बहुत वो सहमत थे। तो उनके एक ग्रंथ में ऐसे उन्होंने लिखा है कि आजकल ये सबसे बड़ी बीमारी ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार पुस्तकों के माध्यम से प्रकट कर देता है। वैदिक सभ्यता में ऐसे था कि केवल जो ब्राह्मण हैं, सही ब्राह्मण हैं, योग्य ब्राह्मण हैं, जो वास्तव में पंडित हैं, विद्वान हैं, वही मात्र कुछ लिखते थे। लेकिन आजकल कोई भी व्यक्ति एक पुस्तक छाप देता है और उसका वितरण करता है, भले उसके विचार कैसे भी क्यों ना हो। तो कहते ये हमारे दुनिया के हानि का कार्य है, दुनिया के पतन का कार्य है, दुनिया की समस्याएं इसके लिए बढ़ गई है। हर एक व्यक्ति तरह तरह के विचार, सारे गलत विचार, वो सब पुस्तक छाप छाप के वितरण करते हैं। और आजकल पुस्तकों के अलावा आजकल तीसरी चीज लगानी चाहिए यहाँ पे, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय नहीं था, वो है इंटरनेट। इसके द्वारा लोग क्या नहीं कहते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, टीका करते हैं, चिट्ठियाँ आगे पीछे जाती हैं। ये इंटरनेट के कारण हमारे भक्तों के समाज में भी बहुत निंदा होती है, इसलिए हमें बच के रहना चाहिए। एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे की टीका करना, ये भी बोलने का वेग है। तो बोलने का वेग कैसे नियंत्रित किया जाता है, बहुत मुश्किल है। जो तो अनियंत्रित वाणी है वो किस प्रकार की है, व्यर्थ की बातें करना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, व्यर्थ की बातें करने से वाणी का वेग कभी भी नियंत्रित नहीं हो सकता है। तो व्यर्थ की बातें तीन प्रकार की हैं, श्री भक्ति सिद्धांत बताते हैं। एक है जो भोगी है, जो केवल भोग की बातें करता है, वो अव्यर्थ बातें हैं। दूसरा है कर्मकांडी व्यक्ति, तीसरा है मायावादी व्यक्ति। ये तीनों प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो व्यर्थ की बातें ही करेंगे। एक बार जो याद है, हम पहले बहुत साल पहले की बात है, किसी व्यक्ति से मिले तो कुछ भगवान के बारे में कुछ बोलना चाहते थे। मुझे तो बोला, अरे क्या भगवान की बातें क्या करते हो, कुछ काम की बात करो। बोला, हाँ आपको वही चाहिए, काम की बात ही चाहिए, है ना। काम के दो अर्थ होते हैं ना, काम का एक अर्थ है कार्य और दूसरा अर्थ क्या है, इंद्रिय तृप्ति करना। तो बोला, यही आप चाहते हो, काम यही समस्या है उनके लिए, यही काम की बात है, काम ही काम की बात है, भगवान की बात ठीक नहीं उनके लिए। तो भोगी लोग क्या करेंगे, अनियंत्रित बातें उनकी है, कर्मकांड भी वही चाहते हैं, थोड़ा सूक्ष्म है स्थूल भोगी के तुलना में। जो कर्मकांडी है वो थोड़े सूक्ष्म रूप से भोगी है। और फिर जो मायावादी हैं उनकी बातें भी व्यर्थ हैं, हम भगवान हैं, आप भगवान हैं, हम सब भगवान हैं, सब व्यर्थ की बातें, बेकार की बातें हैं। एक दूसरे को मिलते हैं, ओम नमो नारायण है, कहते हैं कि आप भी नारायण हैं, हम भी नारायण हैं, सब बेकार की बातें हैं। हमारे संस्था के जो संन्यास के मिनिस्टर हैं प्रहलाद आनंद महाराज, जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा संन्यास लेने के बाद, तो आके मुझे ओम नमो नारायण कह रहे, ऐसे हजार हजार। ऐसे मायावादी जैसे कहते हैं वैसे एक मजाक में वो कह रहे हैं। ये मायावादी लोग ऐसे ही बात करते हैं, इसलिए तीनों व्यर्थ की बातें हैं, चाहे भोगी हो, कर्मकांडी हो, मायावादी हो, व्यर्थ की बातें करते हैं। इसलिए ऐसे बातों से बोलने का वेग नियंत्रित नहीं हो सकता है। केवल कृष्ण कथा करने से बोलने का वेग हम सही तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी ऐसे ही कहते हैं, मन का श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि मन के वेग दो प्रकार है। एक को कहते हैं अविरोध प्रीति। आप देखिए आपके पास जो किताब है और बताइए कि अविरोध प्रीति क्या चीज है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या कहते हैं। यहां भी है, अविरोध प्रीति है अनियंत्रित आसक्ति। अनियंत्रित आसक्ति के कारण मन बहुत वेगवान हो जाता है। वास्तव में वेगवान ये कृष्ण का नाम है, लेकिन हमारा मन वेगवान हो जाता है अविरोध प्रीति के कारण या अनियंत्रित आसक्ति के कारण। तो किस प्रकार की आसक्ति है ये अनियंत्रित आसक्ति? एक है मायावादी दर्शन में श्रद्धा रखना, चैतन्य महाप्रभु ने चेतावनी दी है हम सब मायावादी भाष्य सुनिले और सर्वनाश। और दूसरा है कर्मवादियों का कर्म फलों में विश्वास होना, जैसे राजा प्राची ने बहिष्यत का था और फिर नारद मुनि ने उनको प्रचार करके कृष्ण भावनामृत में ले आए, तो ये भी एक अनियंत्रित आसक्ति है। और तीसरी बात, भौतिक इच्छाओं पर आधारित योजनाओं पर विश्वास रखना, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, व्यापारी हो, इंद्र तृप्ति के लिए भोग के लिए योजनाएं बनाते रहना और इनमें विश्वास रखना। तो ये तीन प्रकार की जो श्रद्धा या विश्वास है, विश्वास क्यों आती है? आसक्ति से। तो ये अनियंत्रित आसक्ति है जिसको अविरोध प्रीति कहते हैं। इससे मन का वेग बहुत तेज हो जाता है। तो ऐसे अनियंत्रित आसक्ति के कारण हम मन को कभी भी वश में नहीं कर सकते हैं। दूसरे प्रकार का मन का वेग है विरोध युक्त क्रोध। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हताशा से उत्पन्न हुआ क्रोध। व्यक्ति जब हताश हो जाता है, हैरान हो जाता है अपने कार्यों में, उसको बड़ा गुस्सा आता है। इंद्र तृप्ति में कोई बाधा आती है तो क्रोधित हो जाता है। काम और क्रोध इनका भी संबंध है। कौन सा श्लोक है गीता का? काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव। काम और क्रोध दोनों रजगुण से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और कौन सा था? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु प्रजायते संजायते। बोलिए, संगः संजायते कामः। जब हम संग करते हैं तो काम उत्पन्न हो जाता है। कामात क्रोधो भी जायते। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्यों? जब काम संपूर्ण नहीं होता, तृप्त नहीं होता है, तो फिर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो इससे हताशा उत्पन्न हो जाती है कि काम मेरा पूर्ण नहीं हुआ। तो तरह तरह के हताशा होते हैं जिसके कारण फिर विरोध युक्त क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये भी एक मन का वेग है। तो साधारण व्यक्ति जो है वो ऐसे मन के वेग को वश में नहीं कर सकते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते हैं कि केवल कृष्ण भावनामृत में ही ऐसे मन का वेग नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, आपने लिख लिया? शरीर का वेग, तो शरीर का वेग तीन प्रकार के, जैसे पहले कह चुके हैं, जीभ का वेग, उदर का वेग और जननेन्द्रियों का वेग। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि प्रसाद ग्रहण करने से ये तीनों ही चीजें नियंत्रित हो सकती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने से जीभ, उदर और जननेन्द्रियां तीनों ही हम वश में कर सकते हैं। और बताते हैं कि तीनों ही चीजें एक लाइन में है, एक रेखा में, एक के ऊपर एक। और मूल क्या है? जीव है। जीव को वश में कर लिया तो उदर वश में आ जाएगा, उदर को वश में कर लिया तो जननेन्द्रिय वश में आ जाएंगे। उदर वश में, जीव वश में नहीं हुआ तो उदर पे ज्यादा जोर पड़ जाता है। उदर पर जोर पड़ने से उदर जननेन्द्रियों पर जोर डालता है। इस प्रकार से जननेन्द्रियां भी अनियंत्रित हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए कृष्ण प्रसाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीव का वेग, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भोजन करना, मांसाहारी या शाकाहारी, ये वर्जित है हमारे लिए। ऐसा नहीं कि हम केवल मांसाहारी भोजन नहीं खाते। यदि कोई शाकाहारी भोजन है जो कृष्ण को अर्पित नहीं किया हुआ है तो उसको भी हम नहीं खाते हैं। तो ये हमारे लिए वर्जित है। तो जीव का वेग नियंत्रित करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो ये सब नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? कुछ तो खाना चाहिए। केवल कृष्ण प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। और कृष्ण प्रसाद भी यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, केवल स्वाद के लिए स्वीकार करना या अधिक मात्रा में स्वीकार करना ये भी वर्जित है। ठीक है, जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे वो खीर की चोरी की बात जो कर रहे थे, केवल स्वाद के लिए करना या अधिक मात्रा में खाना, कृष्ण प्रसाद भी यदि ऐसे करेंगे तो भी जीव को वश में करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे? जीव का वेग नियंत्रित किया जा सकता है सही मात्रा में कृष्ण प्रसाद स्वीकार करने से। ठीक है, माया देवी के 6 प्रकार के प्रलोभन जिससे वे हमारे जीवा को वश में कर लेती है। माया देवी 6 प्रकार के स्वाद हमारे सामने रखती है, प्रलोभन है, आओ ले लो ले लो ले लो। कौन से है वो 6 प्रकार के प्रलोभन? तामसिक आहार, जैसे मांस है, मछली, अंडा इत्यादि। आजकल ब्रह्मचारी आश्रम में कभी कभी लोग सोयाबीन भी पका के खाते हैं, वो भी अच्छा नहीं है ब्रह्मचारी, वो नहीं खाना चाहिए। फिर दूसरा है राजसिक आहार, मिर्च इमली आदि बहुत ज्यादा खाना, ये भी ब्रह्मचर्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। तीसरे प्रकार का आहार है सात्विक आहार, पालक दूध आदि। मादक द्रव्य है पान, हरितकी, सुपारी। पांचवा है धनी व्यक्ति के घर में स्वादिष्ट भोजन, तो धनी व्यक्तियों से मित्रता करना, उनको प्रचार के नाम पर उनके घर में बार बार जाके प्रसाद ग्रहण करना कि बहुत स्वादिष्ट प्रसाद यहाँ देते हैं, ये भी ठीक नहीं है ब्रह्मचारी के लिए, भक्त के लिए। और केवल स्वाद के लिए प्रसाद ग्रहण करना। तो इन 6 प्रकार के तरीकों से, 6 प्रकार के आहारों के द्वारा माया देवी हमको वश में कर लेती है। तो आहार के द्वारा कैसे हम माया में पड़ जाते हैं इसका वर्णन ये है। ठीक है, उत्तर का भेद आवश्यकता से अधिक खाना ये वर्जित है। आवश्यकता से अधिक खाने से उदर का वेग नियंत्रित नहीं होता है। साथ साथ में विशेष दिनों में यदि हम उपवास रखें तो उदर का वेग नियंत्रित किया जा सकता है। जन्माष्टमी है या एकादशी के दिन हम अन्न नहीं स्वीकार करते हैं, तो ऐसे जो भी प्रभुपाद जी ने हमारे संस्था के लिए हम सबको बताया है, इन नियमों का पालन हमको करना चाहिए। ऐसे करने से उदर का वेग नियंत्रित हो जाएगा। जननेन्द्रियों का वेग, अवैध समागम, ये अनुवृत्ति टीका से है। अवैध समागम जो नियम के बाहर, विधि के बाहर किया जाता है, केवल काम वासना की तृप्ति के लिए जो किया जाता है वो वर्जित है। काम वासना के लिए केवल यदि समागम हो जाए, संभोग हो जाए, तो उससे जननेन्द्रिय वेग में कभी भी नहीं आ सकती है। तो इसलिए ऐसे समागम के बारे में चिंतन करना, योजना बनाना, चर्चा करना, वास्तविक संभोग करना, कृत्रिम साधनों का प्रयोग करना, ये सब वर्जित है। तो जो व्यक्ति अपने जननेन्द्रियों को वश में करना चाहता है उसको इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको कहते हैं ये चीज़ें करना ये चीज़ें नहीं करना, उसी तरह से हमारे मन और इंद्रियों को वश में करने के लिए प्रवृत्ति निवृत्ति, निवृत्ति मतलब ये सब चीज़ें नहीं करना और ये सब चीज़ें करना प्रवृत्ति। तो जननेन्द्रियों को वश में करने के लिए ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। और जो गृहस्थ आश्रम में है वैद्य समागम जो उचित है, विवाह के भीतर उत्तम संतान उत्पन्न करना, ऐसे संभोग से जननेन्द्रिय वश में की जा सकती है। ठीक है, इसके साथ पहले श्लोक की चर्चा भी समाप्त हो गई और अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्वामी या गोस्वामी कौन होता है, जिसने अपने इंद्रियों के वश में कर लिया होता है। और इसलिए हम सबको गोदास नहीं बनना चाहिए, गोस्वामी बनना चाहिए। गो का मतलब है इंद्रियां, इंद्रियों के स्वामी बनना चाहिए, इंद्रियों का दास नहीं बनना चाहिए। और जो व्यक्ति इंद्रियों का दास है वो कृष्ण भावना में भी आगे बढ़ नहीं सकता है, बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। ठीक है, समय क्या हुआ, टाइम क्या हुआ अभी? अच्छा अच्छा, तो फिर आज यही समाप्त करते हैं और प्रश्न आदि कल ले लेते हैं। जो भी आपको प्रश्न पहले श्लोक और तात्पर्य के बारे में है उसकी चर्चा हम कल कर लेते हैं। ठीक है, तो कल दूसरे श्लोक की चर्चा करेंगे, तीसरा श्लोक नहीं हो पाएगा तो दो श्लोक। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री उपदेशामृत की जय, गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण।